नमस्कार भारत, तारीख 18 नवंबर दिन बुधवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। आईएस के ठिकानों पर फ्रांस और रूस के हवाई हमले जारी, तो जर्मनी में बम धमाके के खतरे के मद्देनजर ऐन वक्त पर स्टेडियम कराया गया खाली, मैच रद्द। बॉबी जिंदल अमरीकी राष्ट्रपति पद की रेस से हटे, तो मोदी को लेकर मणिशंकर अय्यर के बयान पर हो रहा है विवाद।
पूरा विश्व ISIS और तालिबान जैसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक मुहिम के रूप में खड़ा हुआ है, ऐसे में मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे लोग बेबयानी करके आते हैं।
होगी अखबारों की समीक्षा भी और खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार मानसी दाश से। रूस और फ्रांस ने सीरिया में चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हो रहे हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने बताया कि हमलों में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाने वाले शहर रक्का भी शामिल है। इधर परमाणु ताकत से लैस फ्रांसीसी नौसेना का जंगी जहाज शार्ल्स डी गॉल फारस की खाड़ी से बुधवार को रवाना होगा। यह इराक और सीरिया में IS के ठिकानों पर चल रहे हमलों में हिस्सा लेगा। जॉर्डन के सुल्तान शाह अब्दुल्ला ने इस्लामिक स्टेट पर तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने का इल्जाम लगाया है। कोसोवो में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके विरोध में तुरंत हरकत में आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि IS ने कई मुसलमानों को भी मारा है। शाह अब्दुल्ला ने कहा,
We are facing a third world war against humanity and this is what brings us.
हम मानवता के खिलाफ तीसरे विश्व युद्ध का सामना कर रहे हैं और यही वह वजह है जो हमें एकजुट करता है। जैसा मैंने कहा, यह इस्लाम में एक युद्ध है जिसमें इस्लामिक स्टेट ने पिछले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्या की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इन समस्याओं का जल्दी और एक साथ मिलकर मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। ये थे जॉर्डन के सुल्तान शाह अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका में 2016 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने की रेस से बॉबी जिंदल का नाम बाहर हो गया है। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिकी राज्य लुइजियाना के गवर्नर हैं। फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने माना कि अभी उनके लिए यह उचित समय नहीं है। उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए धन जुटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी और वे जनमत सर्वेक्षण में भी पीछे ही रहे थे। पिछले शुक्रवार पेरिस में रेस्तरां और बार पर हुए हमलों की जांच में फ्रांसीसी जांचकर्ताओं को वीडियो सबूत में एक तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चला है। वीडियो में यह व्यक्ति कार की काली सीट में बेल्जियन मूल के अब्देसलाम सलाह और उसके भाई इब्राहिम के बीच बैठा है। इस व्यक्ति की तस्वीर को टेलीविजन पर दिखाया गया है। हमलों में दोषी बताए जा रहे अब्देसलाम सलाह को पुलिस तलाश कर रही है, जबकि इब्राहिम ने हमलों के दौरान खुद को उड़ा लिया था। नाइजीरियाई अधिकारियों का कहना है कि योला शहर में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई दर्जन घायल हुए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसे शहर के दूसरे कोने में भी सुना गया। रिपोर्ट के अनुसार यह धमाका तब हुआ जब शहर की मुख्य मंडी में व्यापारी दिन का काम समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। नाइजीरियाई राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने शनिवार को योला का दौरा किया था और घोषणा की थी कि इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हराम हार के करीब है। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका से चिकन का आयात फिर से शुरू करने पर राजी हो गया है। पिछले साल दिसंबर में बर्ड फ्लू की आशंका के बाद दक्षिण अफ्रीका ने चिकन का आयात निलंबित कर दिया था। BBC समाचार।
स्वागत है आपका BBC हिंदी सेवा के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूँ अशोक कुमार। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे अमरीकी राज्य लुइजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल की, जिन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का फैसला किया है क्योंकि उनकी उम्मीदवारी पाने की मुहिम को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। होगी चर्चा इस बारे में विस्तार से कुछ देर बाद। पहले अभी बात करते हैं पेरिस हमलों से पैदा हालात और इस्लामिक स्टेट की चुनौती को लेकर। कल फिर फ्रांस और रूस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बम बरसाए। पेरिस हमलों के बाद फ्रांस ने अपने हमले तेज किए हैं, जबकि बीते दिनों मिस्र के सिनाई में रूसी विमान को चरमपंथियों द्वारा गिराए जाने की पुष्टि होने के बाद रूस ने भी प्रतिशोध लेने की बात कही है। पेरिस हमलों के बाद जहां यूरोपीय देश हाई अलर्ट पर हैं, वहीं कल जर्मन शहर हनोवर में बम धमाके के गंभीर खतरे के कारण ऐन वक्त पर एक मैच को रद्द करना पड़ा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मानुषी दास से।
हैनोवर में जर्मनी और नीदरलैंड के बीच खेला जाने वाला था एक दोस्ताना फुटबॉल मैच, लेकिन खेल शुरू होने के मात्र 1.5 घंटे पहले इसे रद्द कर दिया गया।
Das Fußballspiel am heutigen Abend wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.
जर्मन पुलिस ने घोषणा की। बताया जा रहा है कि पुलिस को स्टेडियम में बम की धमकी मिली थी। पिछले शुक्रवार को कई धमाकों का शिकार हुए पेरिस के बाद कई यूरोपीय देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जर्मनी में धमकी के बाद रेलवे स्टेशन को भी खाली करा दिया गया। मैच देखने के लिए गई एंजेलिक तीबे ने बताया, अचानक से वहाँ बहुत से लोग आ गए और हमें जल्दी स्टेडियम से बाहर जाने के लिए कहा गया। हमें कहा गया कि हम डरे नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके स्टेडियम खाली कर दें। हमें नहीं पता था, लेकिन हम बाहर निकल आए। ये थी एंजेलिक तीबे। पेरिस में आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट के हमलों के बाद फ्रांस जवाबी कार्रवाई में तेजी ला रहा है। रूस और फ्रांस ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले और तेज किए हैं। फ्रांस ने उत्तरी सीरिया में लगातार तीसरी रात बमबारी की। पहली बार रूस ने भी अपनी पनडुब्बी से आईएस के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नौसेना को फ्रांसीसी नौसेना के जहाजों से संपर्क कर उन्हें इस लड़ाई में अपना साथी समझने के लिए कहा है। रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने पुष्टि की कि हमले में लंबी दूरी तक मार करने वाले बम और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा,
हवाई हमलों के तहत पहली बार बड़े पैमाने पर सीरिया में ISIL के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जहाजों से हो रहे हमले दोगुने किए गए हैं, जिससे सीरिया के पूरे क्षेत्र में ISIL चरमपंथियों के खिलाफ ताकतवर और सटीक हमले किए जा सकें।
ये थे रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु के शब्द। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलान ने कहा कि फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश में इस्लामिक स्टेट हार गया है। ओला ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में कहा,
Il pensait affaiblir la passion française d'accueillir le monde entier.
वे अपने दरवाजे पर विश्व का स्वागत करने के फ्रांस के जज्बे को हराना चाहते थे, लेकिन आज वे अपनी लड़ाई हार गए हैं, क्योंकि हम चरमपंथ से लड़ने का संकल्प लेकर अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं।
ये थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलां के शब्द। उधर सीरिया में हिंसा के माहौल से परेशान हो सीरिया छोड़कर भागने वाले शरणार्थियों को लेकर नई समस्या सामने आ रही है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पेरिस हमलावरों में से एक के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उसने एक सीरियाई शरणार्थी के रूप में यूरोप में प्रवेश किया हो। शरणार्थियों के साथ किसी तरह के गलत व्यवहार की आशंका ने संयुक्त राष्ट्र को भी चिंता में डाल दिया है। मंगलवार को अमेरिका में कुछ नेताओं ने मांग की थी कि सीरिया से आने वाले प्रवासियों को स्वीकार न किया जाए। स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि देश छोड़कर भाग रहे इन लोगों के प्रति संवेदना की जरूरत है।
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रही थी मानसी दास। 129 लोगों की जान लेने वाले पेरिस के हमलों ने यूरोप और दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। वहीं इससे ये आशंका भी पैदा हो रही है कि पेरिस में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ सकती है। बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे साथी जावेद सुमरो ने पेरिस में एक जनरल स्टोर चलाने वाले पाकिस्तानी मूल के खुर्शीद इकबाल से बात की और जानना चाहा कि पेरिस हमलों के बाद से वो पेरिस में कैसा महसूस कर रहे हैं।
पेरिस में होने वाले हमलों के बाद यहाँ पर लोग दुख और सदमे की सूरतेहाल से दोचार हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ख़दशा है कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ हो सकें। यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक पाकिस्तानी खुर्शीद इकबाल साहब की दुकान पर, जो कि पेरिस के वस्त में वाक़ है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इन हमलों के बाद किस सूरतेहाल के सामने से दोचार हैं। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हमले हुए हैं उन पर आपके तासरात क्या हैं?
नहायत ही दुख की बात है जी। हम खुद यहाँ पर रहते हैं, हमें नहायत ही दुख हुआ है और ये हम इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं और ये हम नहीं मानते हैं कि ये हम पे आकर कोई ऐसी दहशतगर्दी करे या कुछ करे। ये हमारे दिल को ठोस लगी है और सख्त किस्म का सदमा हुआ है और हमें बहुत ही परेशानी हुई है यहाँ पर, और जैसे कि हमारे पे ये हमला हुआ है فرانسوں پہ نہیں ہے, ہمارے پہ حملہ ہوا ہے. یہ
تو یہ بتائیں کہ اس حملے کے بعد, اس کو تقریباً دو دن گزر گئے ہیں, جمعے کی رات میں یہ ہوا تھا, اس کے بعد کیا آپ نے کوئی ایسا رد عمل دیکھا ہے فرانس کے لوگوں کی طرف سے یا کسی دوسری طرف سے؟
نہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارے کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو بہت ہی اچھا, کوئی کسی قسم کی یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں نہایت ہی دکھ ہوا ہے اس چیز کا, اور ہم جو ہے نا اس دل کو اتنا ہمیں دکھ ہوا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز میں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کوئی ایسی دہشت گردی کرے, ہم سخت خلاف ہیں اس چیز کے. اور یہ ہم نہیں, مسلمانوں کو, یہ مسلمان نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں.
لیکن وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, جو یہ حملے کرتے ہیں یہاں فرانس میں یا باقی دنیا میں, وہ اسلام کا نام لیتے ہیں.
نہیں, وہ اسلام ہی ہے ہی نہیں, اسلام کے ہے ہی نہیں, یہ تو اسلام والے ہے ہی نہیں. اسلام ہمارا مذہب اجازت دیتا ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی ذرا بھی تھوڑی سی بات بھی کریں, زیادتی کریں. ہم مسلمانوں کا کبھی کوئی کسی کا قسم کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے, کوئی کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے, جیسے مسلمان ہے وہ بھی سیم چیز ہے ہمارے لیے, کوئی اس کے لیے بات نہیں ہو سکتی ہے. ہم تو سب چاہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کھانا کھائیں, بیٹھیں اٹھتے محبت کریں, پیار کریں, ہمارا تو یہی ہے. ہمیں تو کوئی کسی کے ساتھ جو ہے نا, ہم تو یہاں پہ رہنے والے, ہمیں 32-33-34-35 سال ہوں گے یہاں پہ رہتے پہ, کبھی ہمیں ہمارے لیے کوئی پراپر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ فرینچ والوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے اچھے سے بیٹھ رہے ہیں, اپنا کاروبار رہے ہیں, اپنی روٹی کما رہے ہیں, عزت سے کما رہے ہیں, کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے.
تو یہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر یہ حملے کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
میں کہتا ہوں وہ نہایت ہی بدتر لوگ ہیں, وہ اسلام کے لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ, یہ اسلامی نہیں ہیں. یہ اسلام ہمارا مذہب کبھی اجازت نہیں دیتا ہے ان چیزوں کا, کبھی کسی کو ہاتھ بھی لگانا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے اس چیز کا. یہ اسلام والے لوگ نہیں ہیں, یہ اسلام سے خارج ہیں یہ لوگ.
کل رات سے فرانس نے رقا کے علاقے میں, سیریا میں اور عراق میں, ان کا خیال ہے کہ وہ جو یہ اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہتے ہیں, شدت پسند تنظیم, ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں. تو آپ ان کارروائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟
ٹھیک ہے, جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کارروائیاں کریں, بالکل کریں. ہم ان کے فرانس کے ساتھ ہیں, ہم فرانس کے ساتھ ہیں. جو بھی دہشت گرد ہے اس کو جہاں بھی ملتا ہے اس کو ختم کریں, اس کو, وہ جہاں بھی جس ملک میں کرتا ہے. ہمیں پاکستان میں بھی دہشت گردی ہے, ہم وہاں پہ بھی جو ہے نا وہاں پہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. پاکستان میں ہمارے کتنے مرے ہیں لوگ, شہید ہوئے ہیں 60-70 ہزار آدمی شہید ہوئے ہیں, لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے. یہ مسلمان کبھی نہیں کر سکتا ہے چیز, یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا کسی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے, مسلمان جو بھی سوچے گا اچھا سوچے گا, کسی کے لیے برا, اگر اس کے لیے بھی کوئی برا سوچے گا وہ اچھا سوچے گا, اس کے لیے کبھی برائی نہیں کرے گا اس کے ساتھ.
یہ تھے پیرس میں خورشید اقبال, جو پاکستانی مول کے ایک ویکتی ہیں اور وہاں ایک جنرل اسٹور چلاتے ہیں. ان سے بات کر رہے تھے بی بی سی اردو سیوا کے ہمارے ساتھی جاوید سومرو. لوئیزیانا کے گورنر بوبی جندل ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکی راشٹرپتی پد کی امیدواری پانے کی ریس سے ہٹ گئے ہیں. اپنی چناوی مہم کو پریاپت سمرتھن نہ مل پانے کے کارن انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا ہے. کل یعنی منگلوار کو بوبی جندل نے کہا کہ یہ میرا سمے نہیں ہے. سیدھے چلتے ہیں نیو یارک میں اپنے ساتھی سلیم رضوی کے پاس. تو سلیم صاحب, کیا وجہ رہی کہ بوبی جندل کی مہم کو ویسا سمرتھن نہیں ملا جیسا کہ شاید انہوں نے سوچا تھا؟
جی اشوک, یہ بوبی جندل بڑی امید لگائے تھے لوگ ان سے جب 2008 میں راشٹرپتی اوباما آئے تھے پاور میں, تو کہا جا رہا تھا ریپبلکن پارٹی کا یہ چڑھتا ستارہ ہے اور کچھ ضرور یہ اپنے دکھائیں گے رنگ. لیکن اب جو 2016 میں وہ لڑے ہیں, تو جب اترے جون میں انہوں نے, تو بڑی ان کو امید تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت ڈیٹیل پالیسی پیپرز وغیرہ سب لائے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا فاکس نیوز ٹی وی چینل پہ یہاں, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے ڈیٹیل پالیسی پیپرز وغیرہ دینے کی کوشش کی, لیکن یہ عجیب و غریب الیکشن سیزن ہے. یہ ان کے شبد ہیں جندل صاحب کے, تو یہ عجیب و غریب الیکشن سیزن ہے اور لوگوں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا, تو مجھے لگتا ہے اس لیے کہ یہ میرا سمے نہیں ہے اس وقت, تو اس لیے میں جو ہے سسپینڈ کر رہا ہوں, اس طرح کہہ کے انہوں نے ختم کیا. کہا یہی جا رہا ہے کہ آپ ان کو, ظاہر ہے پیسے کی بھی پرابلم یہاں ہوتی ہے جب آپ کیمپیننگ کرتے ہیں اس طرح. یہ پرائمری کا الیکشن ہے, جو ریپبلکن پرتیاشی ہوگا راشٹرپتی الیکشن کے لیے, وہ امیدواری میں کم سے کم ابھی 14 اور بچے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی جو بھیڑ بھاڑ رہی کینڈیڈیٹس کی, اس میں پیسے جو ہے ڈونرز دیتے ہیں سب کو, تو ان کو اتنے نہیں مل پائے, چونکہ ان کا جو ہے एक या दो प्रतिशत रहा था समर्थन में जो पोल्स आते हैं वो इनके जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उनके ये सर्वेक्षण होते हैं, तो उनमें हमेशा ये एक या दो प्रतिशत पर ही रहे और बिल्कुल नीचे रहे, तो इसलिए ज्यादा इनको कभी समर्थन दिखा नहीं।
तो सलीम साहब, क्या इनकी जो नीतियां इन्होंने उठाई उन नीतियों में कुछ अमरीकी लोगों को दम नहीं लगा, उन नीतियों में कोई कमी रह गई, कैसे नहीं मैनेज कर पाए?
ये असल में ज्यादातर इन्होंने अपनी छवि जो बनाई थी अपने को एस्टैब्लिश कर लिया था एक राइट विंग कैंडिडेट के तौर पे, और जो रूढ़िवादी यहाँ पर जो साउथ जो सदर्न पार्ट है अमेरिका का जो साउथ में जो बाइबल बेल्ट भी कहा जाता है, तो वो जो कट्टर रूढ़िवादी बेस है रिपब्लिकन पार्टी का, तो वो ईसाइयत पर ज्यादा जोर देना और ये सब चीजें वो ज्यादा कहते रहे, यहाँ तक कि वो अपनी भारतीयता को भी बिल्कुल अलग उसको बिल्कुल उससे किनारा कर लिया था उन्होंने, यहाँ तक भी कहा कि भाई हमें इंडियन अमेरिकन और ये सब नहीं कहना चाहिए, हम सिर्फ अमरीकी हैं। तो इससे यहाँ भारतीय मूल के लोग भी खासे नाराज हुए थे और बहुत ही उनका समर्थन भी कम हो गया था। और एक चीज ये भी देखने की है कि वहाँ जो इनका दो कार्यकाल रहा गवर्नरशिप का लुधियाना में, तो वहां भी मेरी बात हुई कई लोगों से वहां पे, लुइजियाना प्रांत में भी लोग कोई इनसे खुश नहीं थे इनके काम से, वहां पर लोग परेशान थे टैक्स से और लोग ये परेशान थे कि भाई वहां पर स्कूल का सिस्टम भी बेहतर नहीं हुआ है, तो खासा इनकी वहां पर कार्रवाई से भी लोग खुश नहीं थे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम रिजवी न्यूयॉर्क से। बॉबी जिंदल के हट जाने के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने के लिए कुल 14 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भाई जे बुश, अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नाम हैं। जिसे भी उम्मीदवारी मिलेगी उसका मुकाबला अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार से होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारी पाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत कई बड़े नामों के बीच रेस है।
बात इनके हकों की।
कुछ लोग हमें कहते हैं कि नकाब में रहो, कुछ लोग कहते हैं कि नकाब नहीं पहनना चाहिए या औरतों के ऊपर जाती है। हमारा कहना है हमें तय करने दो कि हमें क्या करना है।
कहानियाँ इनकी विविध चुनौतियों की।
हमारी जगह अगर लड़का होता उनका बेटा होता तो क्या वो नहीं करता क्या? मेरे लिए वो चैलेंज था कि मुझे ये करके दिखाना है, अगर लड़के कर सकते तो लड़के क्यों नहीं कर सकती।
मुझे ना कुछ नाम से बहुत चिढ़ाते थे इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना तब मुझे निकिता नाम दिया गया है।
महिलाओं के नाम हमारी विशेष श्रृंखला
आधी आबादी
100 चेहरे
सोमवार 23 नवंबर से शाम 7:30 बजे पीवीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में
और सुबह 8 बजे विश्व भारती में
100 महिलाओं से होगी मुलाकात bbchindi.com पर
और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी।
आधी आबादी 100 चेहरे।
एक पाकिस्तानी समाचार चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दुनिया टीवी नाम के पाकिस्तानी चैनल में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच ठीक ढंग से वार्ता शुरू करनी है तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अय्यर के इस बयान की तीखी आलोचना की है। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के दुनिया टीवी को दिए अपने बयान को लेकर फिर से चर्चा में हैं।
एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए करवाइए जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जब की प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बात।
अय्यर ने चैनल को दिए इस साक्षात्कार में भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक ढंग से वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाए जाने की बात कही है।
मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा?
हमें ले आइए, इनको हटाइए।
अच्छा,
इनको आप ही हटा सकते नहीं है,
तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं।
हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना।
अय्यर के इस बयान की भाजपा नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और देश के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए इस बयान को देश का अपमान बताया है। दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा की प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा,
पूरा विश्व ISIS और तालिबान जैसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक मुहिम के रूप में खड़ा हुआ है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे लोग बेबयानी करके आते हैं, वो भी विदेशी जमीन पर। और उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब इस तरीके का विषय उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के लिए कहा गया था, तो उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका वक्तव्य याद करें। उन्होंने उस समय भी कहा था कि हमारी चाहे आपस में राजनीतिक जदोजहद देश के भीतर चलती है, लेकिन किसी भी विदेशी ताकत को हम ये अधिकार नहीं देते कि वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करे, क्योंकि वह भारतीयता का प्रश्न है।
उधर बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता पवन कुमार वर्मा ने भी मणिशंकर अय्यर के इस बयान की आलोचना की है और इसे निंदनीय बताया है।
वो निंदनीय है क्योंकि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के प्रति, मैं समझता हूँ उसमें कंसेंसस है। देश चाहता है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद को बढ़ावा मिला है भारत के खिलाफ, उसको रोक मिले।
भाजपा मणिशंकर अय्यर के इस विवादित बयान के आधार पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अय्यर के इस बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह देश का अपमान नहीं है।
ये थी रोहित जोशी की रिपोर्ट। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में प्रशासन ने तकरीबन 68 साल से बंद सिखों के गुरुद्वारे को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। इस गुरुद्वारे की मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद अगले महीने इसका उद्घाटन किया जाना है। पेशावर से एक रिपोर्ट के साथ अजीजुल्ला खान।
अंदरून पेशावर शहर हश्तनगरी के इलाके में महला जोगियांवाला में सिखों का एक गुरुद्वारा 1947 के बाद से बंद पड़ा था। यह गुरुद्वारा महकमे औकाफ मतरूका अमलाक बोर्ड के साथ है। सिख बरादरी के रहनुमा साहिब सिंह ने BBC को बताया कि वो 1990 से कोशिशें कर रहे थे कि यह गुरुद्वारा इबादत के लिए खोल दिया जाए और 3 साल पहले इसे खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन हालात की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका।
फिर कुछ लोकल जो लोग हैं, इनके खदशात थे इनके खोलने में। काफी टाइम के बाद इस इलाके में सिखों का जाना या गुरुद्वारा खुल जाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लोकल पुलिस जो है, जो DC साहब है और लोकल बॉडीज जो है और CM का एडवाइजर जो है सरदार सरोवर सिंह साहब, इसकी कोशिशों की वजह से हम सब मिलके सारे मसले को हल कर दिए।
उनका कहना था कि कबायली इलाकों में हालात की खराबी की वजह से बड़ी तैदाद में सिख पेशावर मुंतकिल हो गए हैं।
और ये सारे वो सिख कम्युनिटी है जो फाटा में रिहाइश पसीर थे, खैबर एजेंसी में और एजेंसी में पड़ा चिनार और ये कुर्म एजेंसी में मुख्तलिफ जो फाटा इलाका है वहाँ के हालात की खराब की वजह से शिफ्ट आहिस्ता कुछ पहले शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन वगैरह बिजनेस का मसला था। पिछले 25 साल से लोग जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं।
पेशावर में इससे पहले एक ही गुरुद्वारा अंदरून पेशावर डबगरी के इलाके महला जोगन शाह में कायम है। इस गुरुद्वारे में रोजाना बड़ी तादाद में सिख इबादत के लिए आते हैं। महला जोगन शाह के गुरुद्वारे से ताल्लुक रखने वाले चरणजीत सिंह ने बताया कि हश्तनगरी का गुरुद्वारा बाई बीबा सिंह के नाम से जाना जाता है।
सारा संगत दा, सारा कौम सिख दा ये ख्वाहिश है कि ऐसी ये गुरुद्वारा खोलिए कि अपना मजहब अपना त्यौहार इसमें मनाइए, ताकि दुनिया को पता भी लग भी गया है ते लग भी जावे कि सारा पाकिस्तान जुड़ा है, गवर्नमेंट सारे नाल बहुत ताउन कर रहा है।
साहिब सिंह ने बताया कि पेशावर में इस वक्त कोई 1000 सिख खानदान आबाद हैं और उनके मुताबिक पेशावर में पाकिस्तान बनने से पहले कोई 100 के लगभग सिखों की इबादतगाहें थीं। साहिब सिंह ने बताया कि ये तीसरा गुरुद्वारा है जो पाकिस्तान के बनने के बाद खोले गए हैं। इनमें कराची और दूसरा फैसलाबाद में है। ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान के बनने के बाद औकाफ के पास इन अमलाक में स्कूल और दस्तकारी मराकज कायम किए गए थे। हश्तनगरी के इस गुरुद्वारे में भी एक दस्तकारी मरकज कायम था। इस मरकज की पहली प्रिंसिपल शफकत आरा ने BBC को बताया कि वो 1954 से यहाँ इन इमारतों में कायम दस्तकारी मराकज में काम करती आई हैं।
दादा हमारे बहुत काफी थी पता अच्छी थी, कोई 402 मेरे ख्याल को देर की बात है 402 बहुत मछलियाँ थी। हाथ ही कढ़ाई पैरों वाली मशीन तुम्हें नाम सुना होगा, 500 मशीन चलती है ना वो, और कटाई काट ये कपड़े सीना काटना बनाना।
ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بڑا گردوارہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک کمرے میں سکھ عبادت کرتے تھے۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں سکھ برادری کے لوگ مختلف قسم کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سکھ برادری کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اگست اور ستمبر کے مہینے میں 3 سکھوں کو مختلف واقعات میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پشاور میں پھر سے کھلے گا ایک گردوارا، اور اب چلتے ہیں اخباروں کی طرف۔ مانسی، کیا کہہ رہے ہیں اخبار؟
بھارت میں چھپنے والے کئی اخباروں میں آج اسلامک اسٹیٹ سے بھارت کو خطرے والی خبر کو پہلے پنے پر جگہ ملی ہے۔
جی،
چھٹھ کی چھٹا پاک چینل کو دیے پورو کیندریہ منتری کا بیان اور روس کے اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنے کی بات کو بھی جگہ ملی ہے۔ نئی دنیا کہتا ہے کہ ہم پر بھی آئی ایس کا خطرہ۔ نو بھارت ٹائمس نے کہا ہے بھارت پر بھی آئی ایس کی نظر، ہائی الرٹ۔ اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک تقریباً 2 درجن بھارتیوں کے عراق، سیریا میں آئی ایس میں شامل ہونے کے سراغ ملے ہیں۔ جنستا نے فرانسیسی راشٹرپتی فرانسوا اولاں اور روسی راشٹرپتی پوتن کی تصویریں چھاپ کر لکھا ہے کہ جہادی ٹھکانوں پر پھر سے برسے بم۔ ادھر دینک بھاسکر نے پاک چینل کو دیے منی شنکر ائیر کے بیان کو بڑے اکشروں میں جگہ دی ہے۔ منی شنکر ائیر نے پاکستان نیوز چینل پر ایک کاریکرم میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ یدی دونوں دیشوں کے بیچ بات چیت دوبارہ شروع کرنی ہے تو پردھان منتری مودی کو ہٹانا ہوگا۔ دینک بھاسکر نے شام کے وقت کی گووردھن کے کسم سروور کی تصویر چھاپ کر لکھا ہے چیتنیا ہوا ورنداون، مہاپربھو کے آگمن کے 500 سال۔ یہ پرکاش مہوتسو سے سمبندھت تصویر ہے جس کو انہوں نے پہلے پنے پر چھاپا ہے۔ ایک اور خبر میں بھاسکر نے کہا ہے کہ 1984 دنگوں کے معاملے میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ اگر گواہوں کے بارے میں بیورا ملتا ہے تو وہ معاملے کی دوبارہ جانچ کر سکتی ہے۔ کچھ اخباروں نے جیسے کہ دا ہندو نے حال میں مصر کے سینائی علاقے میں درگھٹنا گرست ہوئے روسی ویمان کی تصویر چھاپی ہے اور کہا ہے بوم ڈاؤن پلین ان ایجپٹ، رشیا۔
بہت بہت شکریہ اخباروں کی اس تمام سمیکشا کے لیے، اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی طرف۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ بنگلور میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن بھی کل بارش کا سایہ منڈراتا رہا اور انتتہ بنا ایک بھی گیند ہوئے کل کا کھیل بھی رد ہو گیا۔ ابھی تک 3 دن بارش کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، ایسے میں اب یہ ٹیسٹ میچ نشچت روپ سے ڈرا کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس میچ میں کیول پہلے دن کا کھیل ہوا جب دکشن افریقہ نے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پہلی پاری میں 214 رن بنائے، جس کے بعد بھارت نے بنا کسی نقصان کے 80 رن بنا لیے تھے۔ ادھر پرتھ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ کل بنا کسی نتیجے کے سماپت ہو گیا۔ کل آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے سامنے جیت کے لیے 321 رنوں کا لکشیہ رکھا، لیکن وہ 28 اوور کے بعد 2 وکٹ کھو کر 104 رن ہی بنا سکا۔ اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیل رہے آسٹریلیا کے تیز گیند باز مچل جانسن نے 20 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ وہیں پچھلے دنوں چائنا اوپن کے فائنل میں ہارنے والی بھارت کی اسٹار بیڈمنٹن کھلاڑی سائنا نہوال چوٹ کے کارن ہانگ کانگ اوپن میں حصہ نہیں لے رہی ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں بھارت کی چنوتی کا دار و مدار وشو چیمپئن شپ میں 2 بار کی کانسے پدک وجیتا پی وی سندھو اور کے شری کانت پر رہے گا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ پی وی سندھو اور کے شری کانت چائنا اوپن میں کچھ خاص کھیل نہیں دکھا سکے۔ آج شری کانت پہلے دور میں چین کے تیان ہاؤ وی کا سامنا کریں گے تو سندھو شیرش وریتا حاصل اسپین کی کیرولینا مرین کا سامنا کرے گی۔ آج ہی بھارت کے اجے جے رام شیرش وریتا حاصل چین کے چین لونگ کا سامنا کریں گے، یعنی سندھو اور جے رام کو پہلے ہی دور میں ملے گی کڑی چنوتی۔ ان کے علاوہ مہیلا یوگل ورگ میں بھارت کی جوالا گٹا اور اشونی پونپا کوریائی جوڑی کا سامنا کریں گی۔ ایک انیہ مقابلے میں بھارت کے ہی ایچ ایس پرن ہے جاپان کے کینتا نشی موتا کا سامنا کریں گے۔
اور کاریکرم کے سماپن سے پہلے باری مکھے سماچاروں کی۔
بی بی سی سماچار۔ روس اور فرانس نے سیریا میں چرمپنتھی گٹ اسلامک اسٹیٹ پر ہوائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ جارڈن کے سلطان شاہ عبداللہ نے اسلامک اسٹیٹ پر تیسرا وشو یدھ چھیڑنے کا الزام لگایا ہے۔ 2016 में होने वाली अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए पद की उम्मीदवारी पाने की रेस से बॉबी जिंदल का नाम बाहर हो गया है। पिछले शुक्रवार पेरिस में रेस्तरां और बार पर हुए हमलों की जांच में फ्रांसीसी जांचकर्ताओं को वीडियो सबूत में एक अन्य व्यक्ति के बारे में पता चला है। नाइजीरियाई अधिकारियों का कहना है कि योला शहर में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई दर्जन घायल हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका अमरीका से चिकन का आयात फिर से शुरू करने पर राजी हो गया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। ठीक एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे, कार्यक्रम होगा विश्व भारती। अशोक कुमार को अभी दीजिए अनुमति, इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अभी के लिए विदा।